मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सबसे हमारी जो नई जनरेशन है उसकी जो एक बहुत ही कॉमन शिकायत है उस पर बात करने जा रहा हूँ। बल्कि सच पूछिए तो यूं कहना ज़्यादा सही होगा कि ये केवल इस जनरेशन की ही शिकायत नहीं है, बल्कि शायद हर जनरेशन की शिकायत रही है। लेकिन फिलहाल इस जनरेशन की जो यह शिकायत है कुछ ज़्यादा ही है। और ज़्यादा क्यों है? ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इस जनरेशन के साथ जो पुरानी जनरेशन का गैप है वो जितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा गैप कभी नहीं रहा। दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि जनरेशन गैप तो रहे हैं। अगर हम प्राचीनतम साहित्य को उठाकर देखें, उन्हें पढ़ें और पकड़ने की कोशिश करें तो वहां साफ साफ जनरेशन गैप दिखाई देता है। उस समय जो जनरेशन गैप का कैलकुलेशन होता था वो 25 ईयर्स का गैप होता था टाइम के लिहाज से। और आज सुबह जब मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी, मेरे बैचमेट हैं, उन्होंने इस जनरेशन गैप को 5 ईयर्स कर दिया। और सच बात है कि 5 साल में ही जनरेशन गैप क्रिएट हो जा रहा है। अब सोच करके देखिए कि एक पिता है, माँ है, जिनकी उम्र 55-60 साल के आसपास की है, ठीक है, उनके बच्चे हैं, बच्चों की उम्र आप मान लीजिए कि 25-30 साल के आसपास है, 30-35 साल के आसपास है। तो यहां जो गैप दिखाई दे रहा है वक्त का, वो लगभग 30 ईयर्स का है। अब आप 30 ईयर्स के दौरान समाज में, टेक्नोलॉजी में, जीवन के मूल्यों में जो परिवर्तन हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, मैं यहां गिरावट की बात नहीं कह रहा हूं, अवमूल्यन की बात नहीं कह रहा हूं, मैं परिवर्तन की बात कह रहा हूं। अब जरा उन पर गौर फरमाइए। सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा है वह पड़ा है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को बदल करके रख दिया, हमारी चेतना को बदल करके रख दिया, पूरे समाज को बदल कर रख दिया। और इसने जो परिवर्तन की गति थी, या यूं कह लीजिए कि जो जनरेशन गैप का जो दायरा था उसे बहुत ज्यादा फैला दिया, बहुत जबरदस्त रूप से खाई दोनों के बीच में बना दी। इसलिए अभी की जो नई जनरेशन है और जो पुरानी जनरेशन है, उन दोनों के बीच मूल्यों का तालमेल नहीं हो पा रहा है, व्यवहार का तालमेल नहीं हो पा रहा है, विचारों का तालमेल नहीं हो पा रहा है। और ऐसी स्थिति में जो न्यू जनरेशन है उसकी जो शिकायतें हैं बढ़ गई हैं, ज़्यादा हो गई हैं। और अगर सामाजिक पृष्ठभूमि में उनकी शिकायतों को हम देखने और समझने की कोशिश करें तो वो काफ़ी कुछ जायज भी लगती हैं। हालांकि मेरी इस बात से ज़्यादातर लोग सहमत नहीं होंगे कि उनकी शिकायतों को कैसे जायज़ ठहराया जा सकता है, लेकिन दोस्तों जब हम तटस्थ होकर के एक सामाजिक दृष्टि से उन पर विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी जो जनरेशन जिस तरह की शिकायत कर रही है, अगर उनकी जगह पर हम लोग रहे होते तो हम भी शायद यही कर रहे होते। मतलब मुझे तो कम से कम यही लगता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने शिकायत की बात तो की, लेकिन वो शिकायत क्या है यह तो बताया ही नहीं, तो मैं अब उसे ही बताने जा रहा हूं। सामान्य तौर पर मैंने एक शिकायत जो करते हुए सुनी है अभी नई जनरेशन के युवाओं की, युवतियों की, वो ये है कि मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि मेरी बात कोई मानता ही नहीं, और साथ ही साथ ये कि मुझे भी कोई नहीं समझता, मुझे नहीं समझते हैं, मेरे घर वाले नहीं समझते हैं, समाज वाले नहीं समझते हैं, परिवार वाले नहीं समझते हैं। मैं उन्हें बताने की कोशिश करता हूं, बताने की कोशिश करते हूं, लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आता है, समझ में आ जाता है तो उसे मानते नहीं हैं। और इसको लेकर के जो सही में कुछ भावुक किस्म के युवक और युवतियाँ हैं जो अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने परिवार की बेहतरी के बारे में सोचते हैं, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि कैसे करें, अपने परिवार को कैसे हम बेहतर बनाएं, कैसे हम इन्हें समझाएं, क्योंकि जब तक ये हमारी बात समझेंगे नहीं तब तक बेहतरी की यात्रा शुरू नहीं होगी, और ये समझने को तैयार नहीं है। और हम चाहते हैं कि हम बेहतरी की ओर आगे ले बढ़ें, हमारी बेहतरी तो हो रही है, हम अच्छी नौकरी में हैं, हमने पढ़ लिख लिया है, अपने ढंग से विवाह किया है, अपने ढंग से हम जीवन जी रहे हैं, सुख सुविधाएं हमारे सब हमारे पास हैं। लेकिन जब वो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं तो मिसमैच सा लगता है कि इनके लिए कैसे हम कुछ करें, क्योंकि ये हमारी बात सुनते ही नहीं, ये हमारी बात मानते ही नहीं। अब मैं एक बात यहां आप सबसे कहना चाहूंगा, और मेरी इस बात पर आप विचार भी करें। महाभारत का युद्ध कब हुआ था, महाभारत की कथा कब लिखी गई थी, या महाभारत की जो कहानी है वो किस युग की कहानी है, कितने हजार साल पहले की कहानी यह हो सकती है, आप अपने ढंग से फैसला कर लीजिए। हजारों साल से अधिक का वक्त तो बीत चुका है, ठीक है। व्यास जी को आप जानते हैं जिन्होंने महाभारत लिखी, व्यास, ये भी आप जानते हैं। जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि उसमें व्यास क्या कह रहे हैं, वेद व्यास क्या कहते हैं। वेद व्यास ये कह रहे हैं कि मैं अपने हाथ उठा उठा करके लोगों से कहता हूं कि मुझे सुनो, लेकिन मुझे कोई सुनता ही नहीं, मेरी कोई मानता ही नहीं। ये वेद व्यास का दर्द है, सोच के देखिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि दरअसल जो पांडव पुत्र हैं वो कहीं न कहीं वेद व्यास के ही पुत्र हैं। अब वो एक अलग कथा है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन वेद व्यास के ही पुत्र हैं, यानी कि उनके अपने पुत्र ही उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। क्या महाभारत के महानायक कृष्ण का यही दर्द नहीं था? कृष्ण की बात, चलिए हम दुर्योधन को छोड़ते हैं कि उसने मानी या नहीं मानी, खुद उनके परिवार के लोगों ने नहीं मानी। कृष्ण की बात को सुनने के लिए उनके परिवार के सदस्य तैयार नहीं थे, और उसका नतीजा यह हुआ कि उनके वंश का विनाश हो गया। कृष्ण भी यही कहते हैं कि मेरी कोई सुनता ही नहीं, मेरी कोई मानता ही नहीं। तो ये हम मान करके चलें कि ये जो शिकायत है ये एक शाश्वत शिकायत है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, नमस्कार।